الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ بزرگ و برتر کی توحید اور اللہ وحدہ لا شریک کی یکتائیت اور اللہ وحدہ لا شریک کا کسی بھی شریک سے، کسی بھی رفیق سے، کسی بھی اولاد سے پاکی، اور تمام وہ نقائص جو ہم دنیا میں کسی اور ذات کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے. ان آیات کا مضمون یہی ہے، کیونکہ سورہ آل عمران کا نزول نجران کے نصرانی جو ایک وفد کی صورت میں مدینہ منورہ آئے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 آدمیوں نے ان میں سے بات کی تھی، کلام کیا تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے جو نظریات تھے اور اعتراضات تھے، اس کے جواب میں اس سورت کی اکثر آیات نازل فرمائی ہیں. اور جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا کہ شام کے کچھ یہودی علماء وہ مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں ہر وہ علامت موجود پائی تھی جو تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی اور آپ کے شہر کی علامات بیان کی گئی تھیں، وہی علامات مدینہ میں موجود تھی. اور پتہ کرنے پر ان کو یہ بات کہی گئی کہ اس شہر میں اللہ کے نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اور ان یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، और कहा कि हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर उस सवाल का दुरुस्त जवाब आपने दे दिया तो आप वाकई पैगंबर हैं और हम आप पर ईमान लाते हैं। और उन्होंने यही सवाल पूछा कि कायनात की सबसे बड़ी गवाही और आसमानी किताबों में सबसे बड़ी गवाही वो कौन सी है और उसकी हकीकत क्या है। उनके इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई कि वो गवाही जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, वो गवाही जो कायनात की सबसे अजीम गवाही है और वो गवाही जो कुतुब समाविया में सब के सब में मौजूद है और असलुल असल है, वो गवाही ये है कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर और अल्लाह के मुकर्रब मखलूक फरिश्ते और इल्म वाले सब मिलके ये गवाही दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। चुनांचे वो यहूदियों ने इस बात की तस्दीक की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी हैं और वो आपकी रिसालत पर ईमान ले आए थे। इस आयत के अंदर बहुत बड़े बड़े उलूम के ख़जाने जमा हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे शाहिद अल्लाह हो, अल्लाह ताला गवाही देते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आता है, जो बात आती है वो वही है और वही इस बात की गवाही देती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी हैं। वल मलाइका और फरिश्ते जो आसमान व ज़मीन से वाकिफ़ हैं, अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर का दीदार करते हैं, अल्लाह के करीब रहते हैं और अल्लाह ताला के तमाम हुक्म बजा लाना उनका फरीज़ा है, उनकी ज़िम्मेदारी है और वो आसमान व ज़मीन की ख़बरों से वाकिफ़ हैं, वो भी गवाही देते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो ये हो गई नकल, वही से भी गवाही साबित हो रही है और रिवायत से, हिस्ट्री से, नकल से भी ये बात साबित हो रही है। वउलुल इल्म और अहले इल्म भी गवाही देते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी हैं और इल्म अल्लाह जिसको नसीब कर देता है, अल्लाह ताला उस इल्म की बरकत से उसके अक़ल को कामिल कर देते हैं। तो ये गवाही हो गई अक़ल की और एक ही आयत में मजमुआ जमा हो गया, वहयन भी सबूत आ गया, नकलन भी सबूत आ गया और अकलन भी गवाही मौजूद है। फिर उलमा ने इस पे कलाम किया है कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ने कैसे गवाही दी है, इसलिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक को तो किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है और गवाही तो वहाँ दी जाती है जहाँ पे कोई मुकदमा साबित किया जा रहा होता है या कोई काजी या कोई जज या कोई अदालत या कोई पंचायत होती है तो उसमें गवाही की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह की कुदरत में गवाही की ज़रूरत कैसे पड़ी और क्यों पड़ी है, जबकि वो हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का खालिक है, हर नफ्स का राज़िक है और हर चीज़ पे मुकम्मल कुदरत रखते हैं। उलमा कहते हैं वफ़ी कुल शैइन आयतुन अला अन्नहु वाहिदु, हर चीज़ में ये बात पे दलालत कर रही है और हर चीज़ ये ऐलान कर रही है कि एक इलाह है और माबूद के लायक वही है और वही खालिक है, वही रब है। आसमान और ज़मीन के अजायब हों या सूरत चाँद सितारे हों या नबातात और शजर हों या पत्थर और अहजार हों या इंसान हों या पानी की मखलूकात हों या ज़मीनी मखलूकात हों, हर किस्म की जितनी भी अल्लाह की कुदरतें और अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर की मखलूकात इस दुनिया में हमारे और आपके सामने नज़र आ रही हैं वो भी, और जो हमारे और आपके इल्म में अभी नहीं हैं वो भी, सब के सब ये इस बात पे दलालत करते हैं कि इन तमाम मखलूकात का कोई खालिक मौजूद है। इस सूरज और आसमान और सितारे और ज़मीन के निज़ाम का कोई चलाने वाला मौजूद है, खुद ब खुद नहीं बना है, हादसे से नहीं पैदा हुआ है, बल्कि ये किसी के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं और कोई इसका इंतज़ाम करने वाला मौजूद है। ये अल्लाह की तरफ से गवाही है और अहले इल्म से मुराद क्या है, इसमें दोनों तरफ की बातें मौजूद हैं। एक बात तो यह है जैसे इब्ने कसीर ने फरमाया है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफसरीन ने फरमाया है, अल्लाह ताला को इल्म बहुत पसंद है और यही वजह है कि इस्लाम इल्म का दीन है और इस्लाम की पहली वही इकरा पढ़ने से उसका ताल्लुक बयान किया गया है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने जो एहसानात फरमाए हैं वह वजद कवालन फहदा, ए पैगंबर आपको हिदायत की तलाश रहती थी, आप इल्म के मुतलाशी रहते थे, आप हक़ की तलाश में रहते थे, हमने वो हक़ आपको दे दिया है। और अलम नशरह लका सदरक, ए पैगंबर हमने आपके सीने को वसी कर दिया है। कितना वसी कर दिया है, इन्ना अरदना अलअमानत अलस समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा, हमने अमानत आसमान और ज़मीन पहाड़ों और मखलूकात को पेश की थी कि ये ले लो, इसको संभालो, इसका हक़ अदा करो, लेकिन इन तमाम मखलूकात ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और एहतरामन कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। और वो अमानत क्या थी, वो दीन था, वो शरीयत थी, वो इस्लाम का पैगाम था जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया था। और वो इतना अजीम पैगाम है और बशरियत और वही की मुलाकात है, यही तो वजह है जम्मिलूनी दस्सिरूनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई आप डर गए, वखशीतु अला नफ्सी, बुखारी में है, मुझे अपनी ज़िंदगी पे डर लगा कि मैं मर ना जाऊँ। क्यों? इसलिए कि बशरियत, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक, उसको अपने मैदान से इतना अजीम दर्जे का आगे बढ़ना पड़ रहा है कि आसमानी तालीमात और आसमानी पैगाम और वही जो इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाजिल फरमाई है, उसको वसूल करना, उसको अमानत को महफूज रखना, उसको समझाना, उसको बयान करना, उसको इंसानों तक पहुंचाना, ये बहुत अजीम जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अजीम जिम्मेदारी में सुरुखरू फरमा दिया था और आपने बाकायदा सहाबा से गवाही ली थी। हज्जतुल वदा के मौके पे आपने ऐलान फरमाया, अला हल बल्लग्त, तो मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, मैंने बात समझा दी है, मैंने कुरान पहुंचा दिया है, अब इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है। तो यही वो अहले इल्म है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए पैगंबर, आप हमारे बंदे हैं और आपने इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, आपके सहाबा जो आपके साथ दिन रात रहते थे, आपसे सीखते थे, आपसे पढ़ते थे, आपसे मज़ीद तालीम हासिल करते थे, अल्लाह ताला ने ये इल्म उनके सीनों में मुंतकिल कर दिया था। और फिर सहाबा ने, ऐसे मर्द मुजाहिद और मर्द मैदान थे कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं था जहाँ पे सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिन वान बग़ैर किसी तब्दीली के पहुँचा न दिया हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ने जिसे चाहा इल्म दिया, उसमें फुकहा पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफस्सिरीन पैदा हुए, मुज्तहिदीन पैदा हुए, कुर्राए किराम पैदा हुए, मुअर्रिखीन आए, तारीख दान आए, शुआरा आए, मुअद्दिबीन और बड़े बड़े अदीब पैदा हुए हैं। ये सब हकीकत में दीन की खिदमत कर रहे हैं और ये सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत यानी के इल्म में आपके वो शरीक हैं, आपके वारिसीन हैं। और अल्लाह ताला ने इनको इतना अजीम पैगाम दिया है कि आज भी कोई शख्स इंसाफ से काम लेता हो, अपनी पसंद और अपनी नापसंद को छोड़ दे और इल्म को मेयार बना ले और इल्म को मेयार बनाते हुए तहकीक करे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक एक है और अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। ये है आयत का मतलब, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह की तमाम कुदरतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक मौजूद है। वल मलाइका, और अल्लाह की मुकर्रब मखलूक जिनकी ख़बरें तुम तक पहुँचती हैं, जो वही लेके आते हैं, जो अम्बिया को पैगाम ला के देते हैं, जो वही और वही के तमाम मसाइल हल करते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और ज़मीन पे जो अल्लाह का खलीफा है, ज़मीन पे जो इंसान है, उसमें से भी अल्लाह ने जिसको इल्म दिया होता है वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और अल्लाह के साथ कोई और शरीक नहीं है। अगर आपने गौर किया हो, मैंने कहा था अहलुल इल्म से मतलब दो हैं। पहला मतलब मैंने बयान कर दिया, दूसरा मतलब यह है कि हर इंसान को अल्लाह ने इल्म दिया है, हर इंसान के पास अकल मौजूद है, हर इंसान के पास हिस मौजूद है, हर इंसान के पास برائی اور بھلائی کا فیصلہ کرنے کی قوت فیصلہ موجود ہے اور یہ علم ہے. پتہ چلا کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی قدرتوں پہ غور کرتا ہے, آسمان و زمین کے نظام کو دیکھتا ہے, اپنے نفس اور جسم کے نظام کو دیکھتا ہے, اپنے آس پاس کے نظام کو دیکھتا ہے, تو اس کو اس بات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اس نظام کو چلانے والا وحدہ لا شریک موجود ہے. اور ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کریم خود ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک ذات ہے, ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر معبود متعدد ہوتے اور ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ فطرت کا اصول ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ شریک ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں اختلاف واقع ہوتا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ نہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے, نہ اسلام میں کوئی اختلاف ہے, نہ حدیث میں کوئی اختلاف ہے, اصول تو سب کے ایک ہیں اور یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. اس لیے پتہ چلا کہ یہ ساری کے ساری قدرت کسی ایک وحدہ لا شریک کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. قائمم بالقسط. اور یہ سب گواہی جو دے رہے ہیں یہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ قائمم بالقسط کا تعلق لفظ اللہ سے ہے یا اہل علم سے ہے؟ فیہ قولان مختلفان, اس میں علماء کے دونوں قول موجود ہیں. اگر ہم قائمم بالقسط کو متعلق کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ موجود ہیں اپنی وحدانیت کے ساتھ, قائم ہیں اور نظام کو چلا رہے ہیں. اور اگر ہم قائمم بالقسط کا تعلق اہل علم کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس سے مراد توحید ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس عالم کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, جس عالم کی عبادت صحیح نہیں ہے اور جس عالم کا خیالات اسلام کے خیالات سے متفق نہیں ہے, وہ شخص اللہ کے ہاں عالم ہی نہیں ہے. اور یہ وہ دلیل ہے قائمم بالقسط. صرف اہل علم ہونا کافی نہیں ہے. اب اہل علم تو آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن سے بڑا گمراہ کائنات کا کوئی ہے ہی نہیں. بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں. علامہ جاہز کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جاہز کے بغیر قرآن کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے, لیکن وہ زمانے کے معتزلی تھے. اور اسی طرح بڑے بڑے محدثین کے نام آپ سنتے رہتے ہیں, ان محدثین کے بارے میں آتا ہے وہ شیعہ تھے. مصنف عبد الرزاق, کتنی بڑی کتاب ہے, امام بخاری کے لیول کی حدیثیں اس میں موجود ہیں, لیکن عقیدہ ان کا شیعہ تھا. اس لیے اہل علم کا قائمم بالقسط, اللہ کی توحید پر قائم رہنا یہ ضروری ہے. اور وہ اہل علم اس گواہی میں اللہ کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں, وہ اہل علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کے امین اور اس کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, ان کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ ان کا عقیدہ 100% درست اور خالص ہوگا تو وہ اہل علم ہیں. اگر ان کا عقیدہ خالص نہیں ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں بدعتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, ہر شہر میں پتھر اٹھائیں نیچے سے 10 بدعتی نکلتے ہیں, لیکن ان بدعتیوں میں کوئی ایک نام مجھے بتا دیجئے جس پہ عالم متفق ہو کہ واقعی یہ بہت بڑے عالم ہیں, کوئی بھی نہیں. اور جن علماء میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو تمام فرقے اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ اہل علم ہیں اور ان کے پاس علم موجود ہے, وہ کون ہے؟ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप तारीख उठा के देख लीजिए, ख्वा वो मंगोलों के ख़िलाफ़ जिहाद हो या वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक आज़ादी हो या वो पाकिस्तान के हुसूल की आज तहरीक हो या वो कादियानियों को दीन इस्लाम से चोर और डाकू साबित करने की तहरीक हो या वो उलमा की आपस के कोई हुकूमत हो, खुदा की कसम कायमम बिलकिस्त पे जो आलिम होता है उसी पे कौम जमा होती है, जो कायमम बिलकिस्त नहीं होता है उस पे लोग जमा होते ही नहीं। ये वो मेयार हक है और ये अल्लाह की तरफ से वो एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला जिसे दे देते हैं तो उसके ऊपर उसके मुखालिफीन भी जमा होते हैं और उसके मुखालिफीन भी इस बात का इकरार करते हैं कि इसमें इंसाफ मौजूद है, इसमें किस्त मौजूद है। और वो इंसाफ क्यों करता है? क्योंकि उसको अल्लाह को जवाब देना है, उसने अल्लाह ताला की जो अमानत उसके हवाले की गई है उसकी आबियारी करनी है। और जो शख्स ईमान बिल्ला वल आखिरत रखता हो उसका ईमान उसको इजाज़त नहीं देता कि वो अपना ज़मीर बेचे, वो सौदेबाजी करे, वो करप्शन करे, इन चीज़ों की इजाज़त उसका ईमान नहीं देता है। ये वो नुक्ता है जो हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत के दराजात बुलंद फरमाए, तफसीर में बड़े शौक़ से बयान करते थे। अहले इल्म वो जो कायमम बिलकिस्त हैं और अहले इल्म वो जो तौहीद के ऊपर कायम है और अहले इल्म वो कि जिनके इल्म पे तमाम फ़िरके मुत्तफिक होते हैं कि वाकई इनके पास इल्म मौजूद है, वो वाकयातन अहले इल्म होते हैं। इमाम औज़ाई से रिवायत है कि इस आयत के बाद ला इलाहा इल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम के बाद व अना अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन पढ़ लेना ये सुन्नत है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में ये आयत आपने तिलावत की थी और आपने इस आयत के आखिर में यही फरमाया था वह अना अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन, और मैं भी इस बात पे गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। और औज़ाई की रिवायत भी नोट फरमा लीजिए कि इमाम औज़ाई ने रिवायत नकल की है कि जो शख्स इस गवाही में अल्लाह फरिश्ते और अहले इल्म के साथ शिरकत करता है अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा उसने मेरे साथ एक मुआहिदा किया था, गवाही दी थी, एग्रीमेंट हुआ था, और कायनात में मुझसे ज़्यादा बड़ा गवाही का पासदार कोई नहीं है, मुझसे अच्छी गवाही देने वाला कोई नहीं है, मुझसे अच्छा अहदो पैमान पूरा करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ये मेरा बंदा जिसने गवाही दी थी इस बंदे को जन्नत में जाने दो और जन्नत में दाखिल उसको करने की इजाज़त मिल जाएगी। इतनी अजीम यह आयत है और इतना ज़बरदस्त इसका तरीक़ा है। इसी तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी महावाला देलमी अल्लामा आलूसी रूहुल मानी में रिवायत नकल फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हर नमाज के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा आयतुल कुर्सी और एक मरतबा ये आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 18 शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उल इल्म कायमन बिलकिस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम, तीन चीज़ें हो गई, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और ये आयत, और इसके साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क जो आगे आ रही है। ये चार जगह हैं जो हर नमाज के बाद पढ़ लेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी 70 मुरादें पूरी कर देते हैं। और इन 70 मुरादों में से जो सबसे छोटी मुराद है वो मग़फ़िरत है। कैसी अजीब बात है, इतना अजीम वजीफ़ा है और इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है। आप सब हजरात जो यहाँ मौजूद हैं इसको अपनी ज़िंदगी का अमल बना लीजिए। और इसमें वो वजाहत याद रखिएगा कि सुन्नत पहले हैं और नफल बाद में है। अगर आप नफल को पहले कर देते हैं और सुन्नत को बाद में कर देते हैं तो ये दीन की तरकीब की ख़िलाफ़ वर्जी है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैयत मौजूद है, जनाजा मौजूद है और आप कहते हैं छोड़ो मैं पहले नफल पढ़ लूँ, उसका हक ज़्यादा है, वो फ़र्ज़ किफ़ाया है और नफल है। तो जिस तरह फ़र्ज़ और सुन्नत में तरतीब है इसी तरह फ़र्ज़ किफ़ाया में और नफल में भी तरतीब है। तो ये वो अजीम आयत है कि हकीकत यह है कि इस आयत की तफसीर हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो तालिबिल्माना गुजारिशात हैं वो मैंने अर्ज़ कर दी हैं कि कायनात के सबसे बड़ी गवाही वो ये गवाही है। और इस गवाही में वही भी मौजूद है, इस गवाही में नकल भी मौजूद है, इस गवाही में अकल भी और इल्म भी मौजूद है। और वअना अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन, ये सुन्नत है और हम भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। और ये इतनी अजीम आयत कब नाजिल हो रही है? नसरानियों के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि वो अकीदा तसलीस के कायल थे और वो कहते थे कि खुदा तीन है, अल्लाह है, जिब्राइल है और हज़रत ईसा को अलैहिस्सलाम बिल्ला भी वो खुदा कहते थे। तो सूरह आल इमरान में उनका रद है। अल्लाह ताला ने ऐसी अजीम आयात नाजिल फरमा दी हैं कि हर हर आयत में उनके जवाबात मौजूद हैं। और एक जवाब ये है कि तुम गलत बात करते हो, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, जिब्राइल खुदा नहीं है, हज़रत ईसा खुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह भी गवाही देता है, फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अहले इल्म भी गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। फिर नसारा कहते थे कि जी हम भी मुसलमान हैं, इसलिए कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल व पैगंबर मानते हैं और हज़रत ईसा पे जो किताब इंजील नाजिल हुई वो हमारी आसमानी मजहबी किताब है, लिहाजा हम भी मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया इन्ना दीना इन्दल्लाहि इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ दीन क्या है? दीन इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम कहते हैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। इस्लाम कहते हैं अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। इस्लाम कहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मानने और अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी मर्ज़ी को छोड़ देना। और ये माना इतना वसी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेकर आए थे वो भी यही था कि अल्लाह की हुकुमरानी मानो, अल्लाह की बादशाही मानो, अल्लाह की रुबूबियत मानो और अपने आप को अल्लाह के दीन के मुताबिक कर लो। तो वो हज़रत आदम जो मज़हब लेकर आए थे वो भी दीन इस्लाम ही था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेके आए थे फ़कुल तस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, उनका पैगाम भी यही था, एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। तो हज़रत नूह जो शरीयत और जो दीन लेके आया था वो इस्लाम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग फरमाई फिरौन और फिरौन के साथियों को कि खुदा से डरो, खुदा तुम नहीं हो, खुदा तो अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला का पैगाम सुनो और एक अल्लाह है और अल्लाह की कुदरत कामिला है और अल्लाह ताला जब चाहेंगे इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे, आखिरत कायम होगी اور آخرت میں حساب کتاب دینا ہے, یہ دین تھا اور اسلام کی تعلیمات یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, میرا اور تمہارا خدا ایک ہے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اے عیسیٰ کیا آپ نے بولا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ نہیں, بلکہ وہ تعلیم بھی یہی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام سے جب قوم لڑی تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, مجھے اللہ نے اسلام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت نوح کے زبان مبارک سے اسلام کا نام موجود ہے قرآن کریم میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مکہ شہر کے لیے دعا کی تو کیا فرمایا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اے اللہ مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے اور آنے والی امت کو بھی مسلمان بنا دیجئے. پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم جس دین کو آگے بڑھا رہے تھے اور جو امانت لے کے آئے تھے وہ دین اسلام ہی تھی. وہ اور حضرت عیسیٰ کے حواری جو صحابہ تھے, حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے, سچے تھے, جنتی تھے, وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے حضرت عیسیٰ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کہتے ہیں طریقے کو اور اسلام کہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو. بعد میں جو الفاظ آتے ہیں مثلا شریعت ہے, مثلا مذہب ہے, مثلا منہاج ہے, یہ فروعی چیزیں ہیں. دین اسلام ایک تھا لیکن اس کے ساتھ جو شریعت حضرت عیسیٰ کو دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ نہیں ہے. شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا, ہم نے حضرت نوح کو بھی شریعت دی تھی, ہم نے حضرت موسیٰ کو بھی شریعت دی تھی, تو اس کا جو اصل الاصل بنیاد تھا, جو اس کا متن تھا, جو اس کی بیسکس تھیں, وہ دین اسلام ہی تھا. لیکن اس کے اوپر جو متفرقات ہیں اور جو فروعی مسائل ہیں وہ شریعت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو اختلافات کا شکار ہیں اور مسلمان تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. مسلمان اختلافات کا شکار نہیں ہے, جو مسلمان سے لڑتا ہے اس کو اپنا ایمان دیکھنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. بلکہ مسلمان فروعی شریعت میں آپس میں کلام کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور علم کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب اس میں کلام ہوتا ہے, جب اس میں ڈبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ کانفرنس ہوتی ہے, جب اس پہ سب بیٹھ کے سر جوڑ کے بات کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام اس کا مطلب کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کا مطلب کیا ہے. اور اس کا پھر انجام یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کو کافر کہے اور وہ اس کو کافر کہے, ہرگز نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تھے اور بغداد میں جامعہ اعظمیہ, اللہ کے فضل سے ہم گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنی نصیب کیے, اعظمیہ مسجد میں آئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اور امام شافعی نے نہ بسم اللہ زور سے پڑھا, نہ آمین زور سے پڑھا, نہ رفع یدین کیا. شاگردوں نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں آپ نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استحییت من صاحب القبر, اعظمیہ میں مسجد کے ساتھ ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے, تو امام شافعی نے فرمایا میں امام اعظم جو قبر کے اندر موجود ہیں ان کی فقہ سے مجھے حیا آتی ہے, اس کے احترام کی وجہ سے میں نے آج اپنے مذہب پہ عمل نہیں کیا ہے. یہ ائمہ کے تعلق تھے اور یہ ائمہ کے اصول تھے. اس لیے دین اسلام جیسے حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے, اسی طرح وہی دین جو تمام فقہا, تمام ائمہ, مجتہدین, محدثین, مفسرین ان کے نزدیک سب ایک ہے. فروعات کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور فروعات کے اندر اختلاف تو رحمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا तो आज हमारे दीन का इतनी बड़ी बड़ी किताबें ना होती, इतना ज़्यादा लिटरेचर ना होता। ऑक्सफर्ड की और हार्वर्ड की लाइब्रेरियाँ इस्लामी किताबों से आज भरी पड़ी हैं। क्यों? इसलिए कि इस दीन पे मेहनत हुई है और इस पे कलाम हुआ है, और जब कलाम होता है तो आरा ज़ाहिर होती हैं। अभी मैं और आप बैठ जाएं और किसी भी चीज़ पे बात शुरू कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी और आपकी राय एक हो। हाँ, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो मुंतहा है, जो नुक्ता नज़र है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है, ईमान बिल आखिरत है, कब्र के सवाल व जवाब हैं, नामे आमाल की तकसीम है, पुल सरात पे गुजरना है, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है और जहन्नम और जन्नत के हकदार होना है, इसमें कोई एक इमाम आप हमें बता दीजिए, कोई एक आलिम बता दीजिए जो इख्तलाफ करता हो। हरगिज नहीं, बल्कि ये तो लोगों की नज़र ऐसी है। और दूसरा जो मसला है वो ये है कि जी मुसलमान और काफिर बराबर हैं, हालांकि एक शख्स अल्लाह ताला की फरमान बरदारी कर रहा है और दूसरा शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है, सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। आपकी अदालत में वो दोनों बराबर हैं? हरगिज नहीं। बल्कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ जो दीन है ये इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? वहीद पैगाम है जो हज़रत आदम लेकर आए थे, जो हज़रत नूह लेकर आए थे, जो हज़रत मूसा लेकर आए थे, हज़रत इब्राहीम लेकर आए थे, हज़रत ईसा लेकर आए थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। सबका पैगाम मुत्तफ़क है और वो यही है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे यहाँ दीन, हमारे यहाँ चलने का तरीक़ा, हमारे यहाँ चलने का रविश वो इस्लाम है। और इस्लाम क्या है इसकी तफसीलात आप जान चुके हैं। वह मख्तलफ़ लज़ीना उतुल किताबा, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी इनसे पहले, यानी यहूदी और नसरानी, इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद की वजह से, जेलसी की वजह से, और अपने माल और मता और असबाब के जाने के ख़तरे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है। वरना उनको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा यही है। और उनकी अपनी किताबों में, जैसे अभी हमने कहा कि इस आयत के शान नुज़ूल में आया कि शाम के यहूदी आए थे, उनको ये बात कैसे पता चले कि ये मदीना या यसरब कोई ख़ास बस्ती है? किताबों में मौजूद था। उनको कैसे पता चले कि इस बस्ती में एक पैगंबर आएंगे? क्योंकि उनकी किताबों में मौजूद था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबशरात दी थी, मुबशरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और अल्लाह ताला उनका दीन पूरे आलम में फैला देंगे। लिहाजा अहले किताब जिनसे हमारा बुनियादी इख्तलाफ है वो यही है कि ठीक है आप हज़रत ईसा पर ईमान लाते हैं लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं लाते हैं, और इस्लाम के लिए हज़रत आदम से आखिरी पैगंबर तक का पैगाम मानना ज़रूरी है। इसलिए इस्लाम से पहले ईसाई दीन बरहक था, अब वो दीन बरहक नहीं है। और यहूद बेईमान हज़रत ईसा को भी नहीं मानते थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते थे। इसलिए जिस ज़माने में उनकी तालीमात नाजिल होती थी और तौरात के अंदर अहकाम इलाही मौजूद थे वो इस्लाम था, लेकिन जब इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर हुआ तो अब उनकी किताबों में जो मौजूद है वो इस्लाम नहीं है। ये वो मसला है जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादती हमारी तरफ से नहीं है, इख्तलाफ हमारी तरफ से नहीं है, लड़ाई हमारी तरफ से नहीं है। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम अल्लाह की तमाम किताबों को बरहक मानते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत आदम तक 1,24,000 अम्बिया को बरहक मानते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। और यहूद बेईमान हदीस शरीफ एक बाकायदा एक रिवायत उसे नज़र से गुजरी है कि एक दिन में 70 अंबियाए किराम को यहूद ने कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है? अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे कि ये सब कुछ हमारा है, हमारे अलावा किसी को दे देंगे तो हम आपको मारेंगे। और फिर अंबियाए किराम को कत्ल करने पे उनमें से बनी इसराइल में से 170 लोग उठे थे जो ये कह रहे थे कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, उनका अंजाम आपको मालूम है। उसी दिन 170 उन बुज़ुर्गों को भी इन्होंने कत्ल कर दिया। ये जो भेड़िए और कसाई हैं और ये जो जिनको भेड़िया कहते हुए भेड़िए को शर्म आती है, ये ऐसी कौम है कि इन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को और इनके साथ देने वालों को भी छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला इन पे अपना गज़ब नाजिल करे और इनकी टेक्नोलॉजी और इनका गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला दीन इस्लाम के मौजज़ात ज़ाहिर करके खाक में मिला दें। और इंशाअल्लाह ताला अन करीब ऐसा होगा, ये हमारा ईमान है, यह हमारा यकीन है। हमारा जो एडवांटेज है वो यही है कि हमें अल्लाह ने आसमानी किताब दी है और वो किताब 100% बरहक है, और हमें अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, और हमेशा मुसलमान एक मदद के मुंतज़िर रहते हैं। रहते हैं कि नहीं, आप बताइए, रहते हैं ना? वो क्या है? वो अल्लाह की हुक्म है, वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और फजल है। ये उम्मीद यहूद के पास नहीं है। उनका मिसाइल चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर वो जो आप उनके हाल आप जानते हैं, फिर उनकी चीखें निकल जाती हैं, रोने वाले चुप कराने वाले कोई नहीं है उनको। मुसलमान ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमान हमेशा पुरउम्मीद रहता है और मुसलमान हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि अल्लाहुम्मा अंत तआलम, ऐ अल्लाह आप जानते हैं जो हो रहा है। वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और जो ज़मीन पे ज़ालिम करते हैं अल्लाह ताला उससे गाफिल हरगिज़ नहीं है। यही तो वजह है कि खातून होती है और वो सहूनी फ़ौजियों का मुकाबला करती है। छोटा बच्चा पत्थर उठा के सहूनियों की तरफ फेंकता है, क्यों? उसके पास ये उम्मीद मौजूद है, ये ईमान है। कुछ भी हो जाए और वो जैसी भी टेक्नोलॉजी ले आए और जैसे जैसे भी उनके पास चीज़ें हों, खुदा की कसम उनके पास उम्मीद नहीं है। उनके पास ये कुरान का एडवांटेज नहीं है, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़ख्र नहीं है। इसलिए हम पे जुल्म हो रहा है। हमें मालूम है ऐ ज़ालिम के तुम्हें जुल्म करना आता है, मगर यकी कर ऐ सितमगर हमको मर जाना भी आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे जान कुर्बान करना मुसलमानों के लिए इससे महबूब चीज़ कोई है ही नहीं। एक खातून का इंटरव्यू नज़र से गुजरा, कहने लगी कि मैं हर वक्त नमाज के कपड़े पहनती हूँ, इसलिए कि कोई पता नहीं है कि कब मेरी मौत आ जाए। फ़लस्तीन में वो मौजूद थी तो उनका ईमान देख के मुझे अपने ईमान पे गैरत आई और मैंने कहा कि ऐ अल्लाह आपने इस खातून को क्या अजीम जज्बा दिया है। उसने कहा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि हम जिन कपड़ों में नमाज पढ़ते हैं वो कपड़े हम हर वक्त पहनते हैं कि जब हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हों तो हमारे जिस्म पे वो कपड़े मौजूद। ये चीज़ उनके पास नहीं, और अल्लाह के फजल से हमेशा अल्लाह की मदद आई है। तारीख गवाह है, ज़माना गवाह है, हज़ारों साल की हिस्ट्री गवाह है। बगदाद के अंदर एक औरत 10 मुसलमानों को ज़बह करती थी जब मंगोलों ने हमला किया था। अंदलुस के अंदर मुसलमानों को उठा के पानी में फेंक देते थे। अलजज़ायर में क्या हुआ, हिंदुस्तान में कैसे जुल्म हुए, लेकिन अल्लाह की मदद जिसका हमें इंतज़ार है वो बरहक है, वो सच है। हत्ता यकूल अर्रसूल वल्लज़ीन आमनू माहू मता नसरुल्लाह अला इन नसरल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। तो ये एक और बहस है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ये जो बेईमान नसरानी है और ये यहूदी आपको नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? वजह हसद है। قرآن کہہ رہا ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نہیں کہ اختلاف ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی مگر یہ کہ ان کے پاس علم بھی موجود تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ لیکن بغی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ اے پیغمبر اگر یہ پھر بھی آپ سے لڑتے ہیں ہاتھ جائے ہاتھ جو حجت کرنا مناظرہ کرنا لڑائی کرنا اے پیغمبر آپ چھوڑ دیجئے اگر یہ پھر بھی آپ سے لڑتے ہیں فَقُلْ آپ فرما دیجئے اسلمت وجهي لله میں نے اپنے آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہے وجہ چہرہ انسان کی پہچان چہرہ ہے انسان اصل میں چہرہ ہے چہرہ سردار ہے چہرہ محترم ہے حدیث شریف میں چہرے کی اہانت کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے تو جب آپ اپنا چہرہ کسی کے حوالے کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ پورا کا پورا آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب دنیا ہمارے خلاف ہے اور شیطان بھرپور زور لگا رہا ہے اور باطل بھرپور زور لگا رہا ہے تو اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو ہم ایمان کے اوپر قائم ہیں یہ ملک رہے یا نہ رہے میرا ایمان ایک رتی بھر آگے پیچھے نہیں ہوگا اور مسلمان یہ کیا چیز ہے اس سے بڑے بڑے ظلم مسلمانوں نے مسکرا کر گزارے ہیں لیکن اپنے ایمان پر کبھی کوئی سودے بازی نہیں کی یہ ہے وہ طریقہ فَقُلْ اسلم تو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں مسلمان ہو چکا ہوں اور کس کے لیے ہوا وجہی اللہ صرف اللہ کے لیے ہوا ہوں اسلام اللہ کے سوا معتبر ہی نہیں ہے کسی بابے کے لیے آپ اسلام لاتے ہیں اور کسی مزار کے لیے آپ منتیں مانتے ہیں اور کسی قبر پہ جا کے آپ میلے سجاتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ تو آپ قبر والے کو خوش کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کدھر ہے اللہ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک کرنا جائز ہی نہیں ہے ایاک نعبدو صرف آپ کی عبادت ہوتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یہ جو اہل کتاب بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھے اہل کتاب سے مراد نصرانی یہودی اور امیین سے مراد مشرکین جو میں نے آپ کو بتایا اہل مکہ کے لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا ان سب سے کہہ دیجئے أَأَسْلَمْتُمْ ایمان لاتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُوا اسلام کتنا پیارا دین ہے اگر تم واقعی اسلام لاتے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا تو مبارک ہو تمہیں تم ہمارے بھائی ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اور وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوٹ جاتے ہیں تو جائیں بھاڑ میں جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ اے پیغمبر آپ کے ذمہ صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے اس سے زیادہ ہر ایک کو آپ ہر حال میں مسلمان کریں اور ہر ایک آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو اور ہر ایک بالکل سیدھا ہو یہ آپ کی بس کی بات نہیں لوگ کہتے ہیں اوہو مولوی صاحب کے بیٹے نے کیا کر دیا بہت بری بات ہو یہ دیکھو قرآن کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور اپنے چچا زاد سے نہیں کہا یا عم قل کلمتن چچا کلمہ تو پڑھ لیجئے اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کنعان کو تبلیغ فرما رہے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ میری بات مانو قال یا بنی لا عاصم الیوم من امر اللہ آج بچنے والا کوئی نہیں ہے لیکن کیا وہ بات مانا یہ تو آپ کی جہالت میں قصور مولوی صاحب کا ہے ہرگز نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ابو جہل کے گھر پہ بھی مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اور علماء کے گھر پہ ایسے حوادث ہو جاتے ہیں اس میں عالم صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے لہٰذا آپ اپنا عقیدہ درست کر لیجئے اور اللہ سے خیر مانگیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں کسی ہر قسم کے حادثوں سے محفوظ رکھی ہے کچھ نہ ہونا یہ بہت بڑا فضل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ اے پیغمبر آپ کے ذمہ تو ہم نے پیغام پہنچانا ہے گھول کے پلانا اور اس کا ہر حال میں 100% عمل آنا یہ ضروری نہیں ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بخوبی वाकिफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतहू व ला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहू व ला हाजतन इल्ला क़ज़ैतहा, या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन। اللهم حل المشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر اهل الغزه, اللهم دمر اعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا, واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برا